निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर दे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा, हर मुरली में हम बच्चों के परिवर्तन का आह्वान करते हैं और परिवर्तन की बहुत सारी नई नई युक्तियां भी बताते हैं। इस संगम युग में बाबा कहते हैं, आप बच्चों की हर पल चढ़ती कला है, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचा चढ़ाने वाले बाबा के साथ हो और जो बाबा के गुण हैं उन गुणों के आप भी स्वरूप हो। बाबा कहती हैं, जो बाप की महिमा है वही बच्चों की भी महिमा है। अगर बाप ऊंचे से ऊंचा है तो बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे हैं। अगर बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। अगर बाप विश्व कल्याणकारी है तो बच्चे भी विश्व कल्याणकारी हैं। तो बाबा कहते हैं, बस इतनी सी भी स्मृति आप रखें तो भी आपका परिवर्तन हर पल स्वाभाविक रूप से होता रहेगा, क्योंकि परिवर्तन का आधार है हमारी स्मृति का परिवर्तन। बाबा कहते हैं, बच्चे आप इस विश्व के लिए मार्गदर्शक हो, लाइट हाउस हो। जैसे आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पर लाइट हाउस होता है और इधर उधर से आते हुए जहाज उसको देख करके दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किनारे का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहती हैं, इस संसार में सबकी नैया भटक रही है, सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे खिवैया मेरी नैया को पार लगाओ। तो उन भटकती हुई नावों को किनारा दिखाने वाले और उनको दिशा दिखाने वाले कि भाई इधर आओ, मुक्ति चाहिए तो इधर आओ, जीवन मुक्ति चाहिए तो भी इधर आओ, शांति चाहिए तो भी इधर आओ, ये दिशा दिखाने वाले आप बच्चे हो। और बाबा ये भी कहते हैं कि आप पंडे हो। आपने तीर्थों पर देखा होगा पंडे आगे आगे होते हैं और जो यात्रु होते हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं। अगर पंडा खड़ा होके किसी से बात करने लग जाए तो यात्रु भी खड़े हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, आप भी पंडे हो और आपको दिखते नहीं है लेकिन विश्व की अनेकानेक आत्माएं आपके पीछे हैं। तो बाबा ने कहा, जिसके ऊपर इतनी जिम्मेवारी है उसका एक पल भी चढ़ती कला के सिवाय होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप खड़े होंगे तो जो आपके पीछे आ रही हैं वो भी तो खड़े हो जाएंगे ना। तो हमारे खड़े होने में केवल हमारा नुकसान नहीं है, हमारे खड़े होने में हमारे पीछे आने वाले अनेक आत्माओं का नुकसान है। बाबा ने कहा, आपके मन में आपकी ये जिम्मेवारी स्मृति में रहती है कि भूल जाते हो और अपने को साधारण समझने लगते हो? बाबा कहती हैं, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी आप बच्चों ने कल्प पहले भी निभाई थी और उसकी यादगार भी है। क्या यादगार है? कि जब भगवान ने, यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो गोप गोपियों ने भी उंगली लगाई। इसका मतलब जिम्मेवारी केवल भगवान की नहीं है, उंगली लगाने की जिम्मेवारी आप बच्चों की भी है। तो बाबा ने कहा, अपनी जिम्मेवारी को भूल तो नहीं जाते हो? बाबा कहते हैं कई बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि पता नहीं विश्व का परिवर्तन कब होगा, कितने साल बाकी हैं, इतने साल तो बीत गए, अब शायद इतने बाकी हैं, मन में अटकलें लगाते रहते हैं। बाबा ने कहा विनाश का और स्थापना का आपस में गहरा संबंध है। विनाश कब होगा, अगर इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो ये देखो कि स्थापना कितनी हो गई है। अगर स्थापना का काम बहुत सारा अधूरा पड़ा है तो अभी विनाश कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा। और अगर आपको लगता है कि जैसे विनाशकारी कहां तक पहुंच गई, एक बटन दबाने तक पहुंच गई, एक बटन दबाया और जो चाहती हैं वो परिवर्तन हो जाएगा, तो बाबा ने कहा क्या स्थापना वाले भी एक बटन तक पहुंच गए हैं। और अगर आपकी तैयारी अभी इतनी नहीं है तो फिर भला उनको बटन दबाने का आदेश कैसे दे सकते हैं। बाबा कहते हैं आपकी तैयारी इतनी हो जाए उसकी निशानी ये है कि एक संकल्प दिया, आत्म अभिमानी बनो और उसमें टिक गए, सदा काल के लिए टिक गए। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, आत्म अभिमानी बनो कहा, उसके बाद पॉइंट सोचने लगे, उसके बाद स्थिति बनाने लगे, उसके बाद बनी बिगड़ी इसी हलचल में रहे, तो बाबा ने कहा इसका मतलब आप अभी बटन दबाने वाली अवस्था में नहीं पहुंचे हो। तो बाबा ने कहा अपनी स्थिति को देख करके, अपनी परिवर्तन की गति को देख करके आप बच्चे विनाश का अंदाजा लगा सकते हो। बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि प्रोग्राम मिलेगा ना तो हमारी प्रोग्रेस हो जाएगी, प्रोग्राम मिलेगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, प्रोग्राम मिलेगा तो हम अपना परिवर्तन कर लेंगे। बाबा ने कहा यह भी वास्तव में एक तरह का धोखा ही है, क्योंकि अगर लंबे समय तक प्रोग्राम कोई नहीं मिला तो क्या आप खड़े हो जाएंगे। जो प्रोग्राम के आधार पर अपनी प्रोग्रेस चाहता है इसका मतलब उसकी अपनी लगन नहीं है, वो डिपेंडेंट है। बाबा ने कहा प्रोग्राम मिले न मिले, संगठन मिले न मिले, अपॉर्चुनिटी मिले न मिले, लेकिन आपको जो करना है वो आपको करते ही जाना है। और रही बात प्रोग्राम की, तो बाबा कहते हैं मैंने तो अविनाशी प्रोग्राम दे रखा है। कौन सा प्रोग्राम? सदा भट्टी में रहना है, ये प्रोग्राम मैंने आते ही दे दिया था। तो बाबा कहते हैं जो है ही सदा योग की भट्टी में, योग की भट्टी किस लिए होती है, बाकी भट्टी किस लिए लगाई जाती हैं, परिवर्तन के लिए। भट्टियां कई प्रकार की होती हैं ना, तो उनका उद्देश्य भी होता है कि जो चीज उनमें डाली जाए उसका रूप बदल जाए। तो बाबा कहते हैं आपको भी अविनाशी प्रोग्राम मिला हुआ है। बाबा हम बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाना चाहते हैं, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे साइंस वाले क्या करते हैं, कोई एक चीज होती है, कोई एक तत्व होता है, कोई एक पदार्थ होता है, तो उसकी बहुत गहराई में जाते हैं, इसका रंग रूप, इसके गुण क्वालिटी, जिसका वजन, इसके कहाँ कहाँ उपयोगिता है, बहुत गहराई में जाकर के उसके हर पहलू के बारे में चिंतन मनन करते हैं। तो बाबा ने कहा आप भी तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हो ना, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो आप भी आत्मा के जो गुण है ना उन गुणों में से एक एक की गहराई में जाओ। जैसे आनंद स्वरूप का गुण है, तो बाबा ने कहा इस गुण की गहराई में जाओ। भाई आनंद स्वरूप स्थिति कैसी होती है, उसमें जब हम टिकेंगे तो अन्य आत्माओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आनंद स्वरूप की स्थिति में टिकने के बाद संसार कैसा लगता है? आनंद स्वरूप की स्थिति में मैं आत्मा टिकी तो उसके बाद मेरा क्या परिवर्तन हुआ, इसके क्या क्या लाभ है? ये आनंद दुनियावी आनंद से भिन्न कैसे है? तो बाबा ने कहा इन सब बातों के ऊपर आप भी रिसर्च करो, कैसे वाइब्रेशन फैलती हैं, कैसे आनंद स्वरूप में टिकने के बाद आत्मा प्रफुल्लित होती है, इस गुण के साथ फिर और कौन कौन से गुण जीवन में ऑटोमेटिक आ जाते हैं, इन सब प्रश्नों के ऊपर गहराई से विचार करो। बाबा ने कहा जैसे मछली होती है ना, उसको जल प्रिय होता है, जल से बाहर निकलती है केवल सेकंड दो सेकंड के लिए जीवन निर्वाह अर्थ, कुछ खाना होगा तो मुंह बाहर निकालेगी या किसी और उद्देश्य से निकालेगी, अदरवाइज तो वो जल में डूबी रहती है, जल के अंदर आनंदित रहती है, जल के अंदर ही खेल पाल करती रहती है। तो बाबा ने कहा ये जो आत्म स्वरूप की स्थिति है जिसको बाबा साइलेंस की स्थिति कहता है, स्वीट साइलेंस की स्थिति कहता है, अंतर्मुखी स्थिति कहता है, आत्म चिंतन की स्थिति कहता है, बाबा ने कहा आप बच्चे भी उसमें डूबे रहो। शरीर निर्वाह अर्थ इस संसार को देखना पड़ता है, संसार से थोड़ा बहुत व्यवहार करना पड़ता है, वो तो करना ही, लेकिन जैसे ही वो आवश्यकता पूरी हो जाए फिर अपनी उसी अंतर्मुखता के जल में खो जाओ, गहरे चले जाओ। तो बाबा ने कहा आप बच्चे कर्म करने के बाद कर्मेंद्रियों को सिकोड़ने का अभ्यास डालो। बाबा ने कहा ये ऐसी सुंदर स्थिति है, इस स्थिति के द्वारा आप लंबे समय तक गहन शांति की अनुभूति कर सकते हो, और जब आपके भीतर ऐसी शांति भर जाती है या और भी गुण शांति के अलावा जो आत्मा के और छह गुण हैं आपके भीतर भर जाते हैं तो फिर आप उन गुणों से दूसरों की सेवा करते हो, छाप लगाते हो। बाबा ने इसके लिए भी बहुत सुंदर मिसाल दिया। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में कुछ चीजें होती हैं, मिश्री मीठी होती है, नमक नमकीन होता है, कोई खट्टी चीज होती है, तो उस चीज में अपना गुण है इसलिए वो लोगों को आकर्षित करती है। हम बाजार से चीनी क्यों खरीदने जाते हैं? अगर चीनी में मिठास ही ना हो तो उसे कौन खरीदेगा? वो हमें क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि उसमें मिठास है। नमक क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि उसमें नमक वाले गुण हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी चीज अपने गुणों के कारण लोगों को आकर्षित करती है, तो आप भी लोगों को कब आकर्षित करोगे? जब आपके आत्मा के सातों गुण मूल गुण लोगों को अनुभव होंगे। कोई आपको देखेगा और उसके मन में उसको महसूसता आएगी इसमें तो शांति बहुत है, तो बाबा ने कहा वो बिना कहे बिना बुलाए आकर्षित हो जाएगा, उसको शांति आकर्षित करेगी, जैसे चीनी की मिठास आकर्षित करती है। किसी को लगेगा इसमें तो प्रेम का गुण बहुत है तो वो उस प्रेम के गुण की तरफ बिना बुलाए आकर्षित होगा, क्योंकि आपके अंदर वो गुण है, गुण लोगों को खींचता है। तो बाबा ने कहा अपने स्वरूप को गुणों का स्वरूप बनाओ ताकि बिना कहे लोगों को प्रेरणा मिले, लोग आकर्षित हों और उनको अनुभव हो आत्मा में गुण हैं, ये तो मालूम है, लेकिन वो आपके व्यक्तित्व से टपकने चाहिए। जब आपके व्यक्तित्व से वो प्रत्यक्ष होंगे गुण, वो गुण प्रत्यक्ष कब होंगे? जब लंबे समय का उनका अभ्यास होगा। जो चीज लंबे समय से हमारे पास होती है उसकी जानकारी लोगों को मिलती जाती है, अभी अभी चीज आई और अभी अभी चली गई, तो उसके बारे में लोगों को कैसे पता पड़ेगा कब आई और कब चली गई। लेकिन लंबे समय से हमारे पास है तो उसकी जानकारी लोगों को होती है। तो बाबा ने कहा इन गुणों की गहराई में जाने का लंबे समय का अभ्यास हो, तब वो गुण आपसे प्रत्यक्ष होंगे। बाबा ने कहा आप बच्चे ज्ञान योग तपस्या करते हो तो उसके फलस्वरूप प्रकृति आपकी दासी हो जाती है, बहुत बहुत सुख के साधन आपको मिलने लगते हैं, लोग आपकी महिमा करने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान में आने के बाद थोड़ा सुख मिला, मान मिला, साधन मिले और आप अपनी सुखाली जीवन में खो गए? कहीं आप अपने इतने बड़े कर्तव्य को भूल तो नहीं गए? बाबा ने कहा जैसे योद्धा होता है ना, उसके भीतर में एक अग्नि जल रही होती है। कौन सी अग्नि जल रही होती है? मुझे विजयी बनना है, विजयी बनना है, कुछ भी हो जाए मैं विजयी बन करके रहूंगा, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे मरना पड़े, कष्ट सहने पड़े, पर मुझे जीत हासिल करनी है। तो बाबा ने कहा कहीं आप अपनी विजय के लक्ष्य को भूल तो नहीं गए हो, सुख के जीवन में खो तो नहीं गए हो? सुख के साधन तो अभी बहुत मिलेंगे, प्रकृति दासी होगी, लेकिन जो बच्चे उन सुख के साधनों को किनारे करते हुए अपने विजय के ऊपर लक्ष्य गढ़ाए रखेंगे, वो विजय फिर, वो लक्ष्य फिर सदा काल की विजय प्राप्त कराएगा, अल्पकाल के सुख के साधन नहीं, लेकिन 21 जन्म के लिए सदा काल का सुख, सदा काल की शांति, सदा काल की पवित्रता। बाबा ने कहा जब कोई भी मुश्किल आती है तो चेक करो मुश्किल का समाधान करने के लिए मुझे क्या याद आता है। कुछ लोगों को धन बल याद आता है, कुछ लोगों को जन का बल याद आता है, कुछ लोगों को अपने पद का बल याद आता है। मुसीबत आई है तो मेरे पास धन है, मैं धन से मुसीबत पार कर लूंगा, मेरे पास बल बहुत है, मैं बल से पार हो जाऊंगा। कोई सोचता है मेरा नाम मान शान है, मेरा पद है, समाज में मेरी इज्जत है, मैं उससे पास हो जाऊंगा। बाबा ने कहा नहीं, कोई भी बात आए तो सबसे पहले योग बल याद आना चाहिए। मैं तो योग बल वाली आत्मा हूं ना, तो मुझे अपना रास्ता योग बल से साफ करना है। बाबा ने कहा जब आप अन्य चीजों की तरफ देखते हो ना तो योग की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए हर परिस्थिति में, हर बात में योग बल से विजयी बनने का अभ्यास डालो। मेरा सबसे बड़ा शस्त्र मेरा योग बल है। बाबा कहती हैं मन, वचन, कर्म, संकल्प, संबंध, संपर्क, इन सब की पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। और बाबा कहती हैं इसी कारण से आप ब्राह्मण चोटी हैं, आपका पूजन तो नहीं होता लेकिन गायन होता है, और भक्ति मार्ग में भी इसीलिए ब्राह्मणों को आगे मान करके लोग उनसे ही सब ऊंचे कर्तव्य करवाते हैं। तो बाबा ने कहा इतनी ऊंची प्राप्ति इस अंतिम जन्म में आप बच्चों को बाबा से होती है। तो बाबा ने कहा इतनी ऊंची प्राप्ति के लिए अगर आपको कुछ त्याग करना पड़ता है तो बाबा ने कहा उस त्याग को त्याग नहीं समझो लेकिन भाग्य समझो, क्योंकि वो त्याग के बदले आपको क्या मिला, उस मिली हुई चीज की महानता तो देखो। इसलिए संगम युग पर हम जो भी कोई त्याग करते हैं, वास्तव में वो त्याग नहीं है, वो बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। बाबा ने कहा त्याग त्याग करोगे ना तो थक जाओगे और भारी भी लगेगा, लेकिन त्याग क्या किया, कोई अच्छी चीज का त्याग तो किया नहीं। क्या त्याग किया? खान पान की बुरी चीजों का त्याग किया, बुरे संग का त्याग किया, बुरे चिंतन का त्याग किया, या जो दुख देने वाले मित्र संबंधी थे उनका मन से त्याग किया। तो बाबा ने कोई अच्छी चीज तो बाबा ने आप बच्चों से छुड़वाई नहीं। इसलिए कोई भी चीज जिसका आपने त्याग किया उसे त्याग नहीं लेकिन भाग्य समझो। बाबा ने कहा कई बच्चे त्याग तो कर लेते हैं लेकिन उनके चेहरे पे खुशी नहीं रहती है। तो बाबा ने कहा इसका भी कारण है। कारण ये है कि बाबा जिन जिन बुराइयों को त्याग करने की बात कहते हैं ना, उन बुराइयों को त्याग तो देते हैं लेकिन अंदर जगह खाली तो हो गई, और उस खाली जगह में बाबा वाली बढ़िया बढ़िया बातें भरते नहीं, तो वो खालीपन लगने लगता है। ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर अब कुछ है ही नहीं, उमंग नहीं, उत्साह नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं। मैंने किया तो बहुत कुछ, मैंने ये भी छोड़ दिया, बाबा ने कहा तो मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने ये भी छोड़ दिया, लेकिन बाबा से आपने लिया क्या क्या उसकी भी तो लिस्ट बनाओ ना। बाबा केवल छोड़ने की बात थोड़े कहते हैं, बाबा तो ये कहते हैं मेरे से ले लो। तो आपने सारा ध्यान छोड़ने पे लगा दिया, लेने पे ध्यान नहीं लगाया। बाबा से लेना भी तो है ना, क्या क्या लेना है बाबा से? अविनाशी प्यार लेना है, गुण लेने हैं, शक्तियां लेनी है, सिद्धियां लेनी है, दिव्य बुद्धि, ये जितनी भी गिफ्ट है ये बाबा से मिलने का एहसास हो। जब हम अपने जीवन का अवलोकन करें तो हमको ये स्मृति आए कि मुझे बाबा से ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला। ये स्मृति ना आए कि मैंने ये भी छोड़ा, मैंने ये भी छोड़ा। अगर छोड़ने का पलड़ा भारी लगेगा ना तो भारी हो जाएंगे, और प्राप्ति वाला पलड़ा अगर भारी लगेगा तो हल्के हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे एक एक विकार को छोड़ने के लिए बहुत युद्ध करते हैं, लेकिन एक को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है। बाबा ने कहा अभी मोटे रूप में तो विकार नहीं आते, लेकिन विकारों का सूक्ष्म रूप अभी भी बच्चों को परेशान करता है। तो बाबा ने बताया कि काम का मोटा रूप नहीं है लेकिन उसका सूक्ष्म रूप है एक्स्ट्रा स्नेह। किसी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, या तो बार बार उसकी स्मृति आए, या उसको कुछ एक्स्ट्रा देने को मन करे, या उससे कुछ लेने को मन करे, कुछ भी। बाबा ने कहा ये जो एक्स्ट्रा है ना स्नेह, अच्छी बात है। बाबा ने कहा है आपस में रूहानी स्नेह से रहो, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा शब्द है ना ये अंश है। तो बाबा ने कहा इसको भी चेक करके देखो, किसी के लिए कम, किसी के लिए जास्ती, किसी के लिए एक्स्ट्रा, ऐसे ना हो। दूसरा बाबा ने कहा क्रोध बच्चों में नहीं है लेकिन क्रोध का अंश है घृणा। कहेंगे इस आदमी का मुंह देखते ही मेरी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, मैं तो इससे दूर रहूं तो ही अच्छा है। तो बाबा ने कहा डायरेक्ट आप क्रोध तो नहीं कर पाते हो लेकिन दूर रहने की कोशिश, बचने की कोशिश, ये घृणा है। तो बाबा ने कहा ये घृणा भाव भी वास्तव में क्रोध का ही अंश। तो बाबा ने कहा शुभ भावना रखेंगे, ये भी मेरे ही परिवार की आत्मा है, तो शुभ भावना रखने से घृणा भाव खत्म हो जाएगा। और बाबा ने कहा लालच नहीं है अभी बच्चों में, लोभ नहीं है, लेकिन लोभ का अंश आवश्यकता। लेकिन बाबा ने कहा आवश्यकता की भी तो कोई हद होती होगी ना, बेहद की आवश्यकताएं तो नहीं है ना। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो बाबा ने कहा कई बार बच्चे नाम तो आवश्यकता का लेते हैं लेकिन आवश्यकताओं को भी बेहद बना लेते हैं, तो वो लालच का ही रूप है, नहीं तो आवश्यकताएं तो बहुत थोड़ी होती। तो बाबा ने कहा बड़े रूपों को तो जीत लिया लेकिन ये जो छोटे रूप है ना, ये व्यर्थ संकल्प पैदा करते हैं। और बाबा ने कहा है समय और संकल्प ये संगम युग के अति अमूल्य खजाने हैं, और वर्तमान संगम युग का समय तो अति अति अमूल्य है। बाबा ने कहा तीव्र गति से समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में तो एक भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प बहुत सारी शक्ति को नष्ट करता है। कई बच्चों को लगता है कि हमको तो व्यर्थ संकल्प आते ही नहीं है, लेकिन बिना जरूरत के एक बात को आप दो बार तीन बार चार बार मन में रिपीट करते हो तो वो भी क्या है, वो भी व्यर्थ संकल्प। वही बात बार बार मन में क्यों रिपीट हो रही है? बाबा ने कहा बहुत सूक्ष्म है मन की गति, इसलिए उसको सूक्ष्मता से चेक करो और देखो कि कौन सा संकल्प मेरी कमाई में घाटा डाल रहा है। बच्चों की हर पल चढ़ती कला चाहिए, हर पल जमा का खाता चाहिए। मन व्यर्थ संकल्प क्यों करता है? बाबा ने कहा उसको आप सार्थक काम में नहीं लगाते हो। जब किसी को सार्थक काम न मिले तो वो क्या करेगा, निरर्थक भटकेगा। ब्राह्मण जीवन की बाबा ने कहा तीन समस्याएं हैं। पहली समस्या है चंचल मन, दूसरी समस्या है भटकती हुई बुद्धि, और तीसरी समस्या है अनेक जन्मों के संस्कार, बुरी आदतों के रूप में। बाबा ने कहा इन तीनों के ऊपर नियंत्रण चाहिए आप आत्मा माली को। तो चंचल मन को क्या करो, आपने देखा होगा बगीचे में कई बार तितली को या भंवरे को या मधुमक्खी को कितनी चंचलता करते हैं, एक पर बैठे फिर उड़ गए, फिर बैठे फिर उड़ गए। लेकिन वही भंवरा, वही तितली, वही मधुमक्खी जब उसको कोई रसीला फूल मिल जाता है तो उसके ऊपर ऐसी बैठ जाती हैं कि आप उड़ाओगे तो भी नहीं उड़ेगी, हिलाओगे तो भी नहीं हिलेगी, आप पौधे की डाली पकड़ के हिलाओगे तो भी वो उड़ेगी नहीं क्योंकि वो रस में मशगूल हो गई। तो बाबा ने कहा ये जो चंचल मन है ना, ये इसीलिए चंचल है कि इसको कहीं भी आनंद ही रहा। आपने इसको संसार के अनेक पदार्थ चखाए, खिलाए, दिखाए लेकिन कहीं इसको आनंद नहीं मिला। ये एक जगह बैठा और उड़ गया, फिर दूसरी जगह बैठा और उड़ गया, है ही नहीं ना आनंद। तो ये क्या करे, फिर उड़ के वहीं आ जाता है जहां से पहले उड़ के गया था, पता है यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वहीं आके बैठता है क्योंकि इसको कोई ठिकाना नहीं। तो बाबा ने कहा इस भटकते मन को ठिकाना दो, इसको ऐसा रस दो जिसमें ये डूब जाए, भटकना बंद कर दे। और वो रस कौन सा है, आनंद रस, अतिंद्रिय आनंद रस, इंद्रियों से परे का रस। इंद्रियों वाले रस में तो ये भटकेगा, तो इंद्रियों से डिटैच करके इसे ईश्वरीय सुख में रमण कराओ तो ये भटकना बंद कर देगा। और बुद्धि भटकना बंद कब करेगी, जब बुद्धि रूपी नेत्र को भी दिव्य नजारे देखने को मिलेंगे। इस दुनिया के नजारों में बुद्धि को भी आनंद नहीं आता इसलिए वो भटकती ही रहती है, एक चीज देखेगी दूसरी तीसरी। देखो लोग टीवी के आगे बैठते हैं तो क्या करते हैं, रिमोट को घुमाते ही रहते हैं, कुछ देखते थोड़ी, उन्हें कोई चीज पसंद ही नहीं आती है, घुमा घुमा के ही खड़े हो जाते। तो बुद्धि केवल एक दृश्य को देखे और आनंदित हो जाए, वो कौन सा दृश्य है? सतयुग का दृश्य भी है, परम धाम का भी है, सूक्ष्म वतन का भी है, मधुबन का भी है। ये सब दृश्य ऐसे हैं जिनमें आप बुद्धि रूपी नेत्र को टिकाएंगे तो ये भटकना बंद कर देगा। और फिर बाबा ने कहा पुराने संस्कार, एक मुरली में बाबा ने कहा था अगर आप बच्चे बीज रूप स्थिति में टिके तो जो पापों के पुराने बीज हैं वो खत्म हो जाएंगे। बीज रूप स्थिति कौन सी स्थिति है? बाबा कहते हैं वो बहुत शक्तिशाली स्थिति है। और वैसे भी आप देखिए दुनिया में किसी को किसी नए, जो वैज्ञानिक होते हैं नया फल बनाते हैं, नई किस्म तैयार करते हैं लैब में, आजकल आपने देखा होगा फलों के फूलों के नए नए बीज पैदा होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो पत्तों में परिवर्तन नहीं करते, डालियों में परिवर्तन नहीं करते, वो बीज को प्रोसेस करते हैं। बीज के अंदर सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। एक चने के बीज में चने का पेड़ समाया होता है, बादाम के बीज में बादाम का पेड़ समाया होता है, सारे उस पेड़ का रंग कैसा होगा, फूल कैसा होगा, लंबाई कितनी होगी, खुशबू कैसी होगी, फल फूल कैसा होगा, ये सारी बातें उस बीज के अंदर होती है। तो वो क्या करते हैं, बीज के अंदर कुछ ऐसी केमिकल परिवर्तन करते हैं। मान लो उन्हें फूल का रंग बदलना है तो उस तरह का परिवर्तन वो बीज में कर देते हैं। मान लो उनको कड़वी चीज को मीठा बनाना तो उस तरह का परिवर्तन वो बीज में कर देते हैं। कुछ केमिकल चेंजेस करते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, उनकी प्रक्रियाएं होती हैं। तो बाबा ने कहा आपके भी संकल्प व्यवहार बोल कर्म बीज में भरे हुए हैं। हम आत्माओं का बीज, हम आत्माएं इस शरीर की बीज, ये शरीर पेड़ है, इसके थ्रू जो भी एक्टिविटी प्रदर्शित हो रही है उनका बीज है आत्मा। तो बाबा ने कहा अगर पुराना संस्कार मिटाना है, नया संस्कार भरना है तो क्या करना पड़े? बीज को ही प्रोसेस करना पड़े ना, बीज में ही परिवर्तन करना पड़े ना। तो बीज में परिवर्तन कब हो? जब हम बीज रूप स्थिति में टिके। और बीज रूप स्थिति में टिकने का मतलब क्या है कि जो सुप्रीम बीज है, जगत का बीज है बाबा, उस बीज के साथ हम अपनी समानता करें, उसके जैसी स्थिति में टिके तो हमारे अंदर जो उससे विपरीत चीजें हैं वो निकल जाएं। अब जैसे हम परम धाम से इस धरती पर आए, दो युगों तक हमने देवताई जीवन व्यतीत किया, उन दो युगों में हमारे अंदर सब सतोगुणी या सतो सामान्य बातें थी, लेकिन द्वापर युग आया तो उन अच्छी बातों का पलड़ा धीरे धीरे कम होता गया और ऑपोजिट बातों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता गया। तो क्या हुआ, जैसे हमारे आत्मा में शांति का गुण था लेकिन शांति मिली नहीं बाह्य जगत में तो अशांति अंदर आ गई, जिसका पलड़ा भारी हुआ वो आत्मा में भरती गई, अशांति भर गई, दुख भर गया, नफरत भर गई, क्रोध भर गया, हिंसा भर गई। जब अच्छी चीज नहीं मिलेगी तो बुरी चीज तो भरेगी ना। लेकिन अब जब हम बाबा के सामने बैठते हैं, सुप्रीम बीज के सामने बैठते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने बैठते हैं, या वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट, साइंटिस्ट्स का भी साइंटिस्ट, आत्मा रूपी बीज को इस तरह से प्रोसेस कर देता है कि उसकी जो गलत चीजें थी, जो द्वापर युग से उसमें प्रवेश हो गई थी परिस्थितियों वश, अज्ञानता वश, उन सब को वो एलिमिनेट कर देता है, निकाल देता है, खत्म कर देता है। जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है ना तो क्या होता है, गलियों का कीचड़ा कैसे सूख गया मालूम नहीं पड़ा, गीली चीजें कैसे सूख गई मालूम नहीं पड़ा। एक सूर्य की किरण कितने काम करती है, पेड़ पौधे उसी से भोजन बनाते हैं, मनुष्य को उसी से विटामिन डी मिलता है, उसी से लोग बिजली भी पैदा करते हैं, भोजन भी बनाते हैं, और उसी से पानी भी वाष्प बन के उड़ता है। कितने सारे काम एक सूर्य की किरण से होते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य की किरणें भी एक साथ कई काम करती हैं। तो जब आत्मा रूपी बीज के ऊपर ज्ञान सूर्य की किरण पड़ती है डायरेक्ट, तो क्या होता है, उस बीज में जो अनचाही चीजें थी, व्यर्थ चीजें थी, वो सब चीजें निकल जाती हैं। और ज्ञान सूर्य की किरणों में जो शक्तियां भरी हैं, प्रेम भरा है, पवित्रता भरी है, वो उसमें समाती चली जाती है। तो बाबा ने कहा ये ऐसी पावरफुल स्टेज है जिसमें पुराने संस्कार जल जाते हैं। और बाबा ने कहा जली हुई चीज कभी भी दोबारा पैदा नहीं होती, तो राख बन गई, अब वो आएगी नहीं सामने। लेकिन इतनी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने के लिए खुद को भी एकदम स्वच्छ बनाना पड़े। जो स्वच्छ चीज होती है वो शक्तिशाली होती है। कहते हैं जितनी चीज निर्मल होगी उसकी निर्बलता खत्म हो जाएगी, और जितनी वो कम निर्मल होगी उतनी ही वो निर्बल होगी। शुद्ध चीज में शक्ति होती है। तो आत्मा जितनी शुद्ध होगी, एक तो जैसे कहते हैं बिना जंक की सुई को चुंबक खींचता है, तो उसको ज्ञान सूर्य खींचेगा अपनी तरफ, वो शुद्ध होगी तो हल्की होगी, उड़ पाएगी। आपको बीज रूप स्थिति के लिए इस देह और दुनिया की धरनी को छोड़ना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा इस, और जहां वो बीज रूप जगत का बीज ऑलमाइटी है उसके करीब जाना पड़ेगा। तो यहां से हम उड़ सके, डिटैच हो सके, पूरी तरह से यहां से निवृत्त हो सके, वो तब हो जब मन एकदम शुद्ध हो। नहीं तो क्या होता है, जैसे आप भारी चीज को ऊपर भेजते हो तो वो थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। बहुत मुश्किल होता है भारी चीज का ऊपर जाना, एटमॉस्फेयर में घूम करके फिर नीचे आ जाएगी। अब मन के ऊपर भार कौन कौन से, उन सबको उतारना पड़े। उसमें हम देखते हैं एक तो पास्ट का चिंतन व्यक्ति को नीचे खींचता है, जैसे पंछी के पांव में डोर बंधी हो, आप उसे उड़ाएं, थोड़ा सा उड़ा फिर डोर बंधी हुई थी आगे उड़ नहीं पाया फिर नीचे आ गया। जिस आदमी के पांव पीछे बंधे हो वो आगे कैसे जाएगा, जिसका मन पीछे जा रहा है वो आगे कैसे जाएगा। किसी का मन 10 साल पीछे घूम रहा है, 5 साल पीछे घूम रहा है, 2 साल पीछे घूम रहा है, 1 साल पीछे घूम रहा है, भला वो आगे कैसे जाएगा, उड़ेगा कैसे। तो पास्ट के चिंतन से मन मुक्त, और दूसरा भविष्य की चिंताएं, वो भी ऊपर नहीं उड़ने देती, और तीसरा वर्तमान के बारे में नेगेटिव थिंकिंग। तो बाबा ने कहा जब आप इन तीनों जंजीरों से आत्मा को मुक्त करेंगे तो आत्मा परम धाम में उस पावरफुल स्थिति का अनुभव करेगी जिसमें पुराने संस्कारों के बीज जल जाएंगे, पाप का बीज जल जाएगा। जब पाप का बीज ही जल गया तो फिर वो इमर्ज कैसे होगा, अंदर बीज है ही नहीं, ना आंखों से इमर्ज होगा, ना वाणी से इमर्ज होगा, ना हाथों से इमर्ज होगा। कर्मों में पाप का बीज आएगा नहीं क्योंकि जल गया। इसलिए बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन के लिए बीज रूप स्थिति बनाओ, आत्मा बीज बन करके सुप्रीम बीज में समा जाए, उसके संग के रंग में रंग जाए, उसके समान होने का अनुभव करे। तो जब ऐसी अनुभूति करेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा, बुद्धि भटकना बंद करके दिव्य बुद्धि बन जाएगी, और संस्कार जैसे बाबा चाहते हैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण वैसे बन जाएंगे। ऑप्शन